नमस्कार। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए कल मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी प्रमुख उम्मीदवार। उत्तर और पूर्वी भारत अब भीषण गर्मी की चपेट में। ओडिशा और बिहार में अनेक लोगों की मौत। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी, 3 लोगों की मृत्यु और 1,88,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। अमरीका ने यूक्रेन को रूस में कुछ निश्चित ठिकानों पर अमरीकी हथियारों से हमले की अनुमति दी। और सिंगापुर बैडमिंटन ओपन में भारतीय जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद सेमीफाइनल में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी और अनुराग ठाकुर तथा कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी सहित प्रमुख नेताओं का राजनीतिक भविष्य कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। निर्बाध और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान केंद्रों पर शेड, पेयजल, शौचालय, व्हीलचेयर और बिजली की उचित व्यवस्था की गई है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों के लिए चुनाव कर्मचारी अपने अपने मतदान स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं।
राज्य भर में मतदाताओं के लिए कुल 24,451 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 16,517 ग्रामीण क्षेत्र और 7,934 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। विभिन्न जिलों में चुनाव अधिकारी मतदान कर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और अन्य उपकरणों के साथ रवाना कर रहे हैं। आज शाम तक सभी मतदान केंद्र पूरी तरह तैयार कर लिए जाएंगे। मतदान कल सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त संख्या में पुलिस व केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया गया है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
लॉजिस्टिकली हमारी तरफ से सारी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर चुके हैं। अब पोलिंग पार्टीज आज डिस्पर्स हो जाएगा, आज शाम तक तो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएगा और कल सवेरे 7 बजे से लेके 6 बजे तक पोलिंग है। इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारी, तो वहाँ पे ऑलरेडी BSF तैनात है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पंजाब पुलिस का है, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
यहां पे 4 लोकसभा सीट्स हैं और 6 विधानसभा सीट्स पे बाय इलेक्शन हो रहा है। जो कैंडिडेट्स हैं हमारे 37 कैंडिडेट्स हैं लोकसभा सीट्स के लिए, 4 सीट्स के लिए, और 25 कैंडिडेट्स हैं 6 विधानसभा सीट्स के लिए जहां पे बाय इलेक्शन है। हमारी काफी पार्टीज कल मूव कर गई हैं अपने पोलिंग स्टेशंस पे और शेष जो पार्टीज हैं वो आज पोलिंग स्टेशन पे चली जाएंगी। पोलिंग स्टेशंस पे सभी तरह की अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का प्रावधान किया गया है और जिससे कि मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो और सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम किया गया है।
पश्चिम बंगाल में कल 9 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों तथा कोलकाता की 9 सीटों पर कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। कुल 124 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इसके अलावा बरानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कल उपचुनाव भी होगा। चुनाव आयोग ने कल बारिश के कारण मतदान प्रक्रिया में होने वाली किसी भी तरह के व्यवधान से निपटने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। चक्रवात रेमाल के कारण कारण दोनों 24 परगना जिलों के तटीय क्षेत्रों, सुंदरबन और द्वीपों में कई मतदान केंद्रों के क्षतिग्रस्त होने के बाद आयोग ने युद्ध स्तर पर बुनियादी ढांचे को फिर से तैयार किया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
ओडिशा में 42 सीटों पर विधानसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी इसी चरण में होगा। आयकर विभाग ने वर्तमान लोकसभा चुनावों के दौरान रिकॉर्ड 1,100 करोड़ रुपए और आभूषण जब्त किए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये 2019 के आम चुनावों में जब्त 390 करोड़ रुपए की तुलना में 182% ज्यादा है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के स्वामी विवेकानंद स्मारक पर 45 घंटे लंबे ध्यान का आज दूसरा दिन है। इससे पहले श्री मोदी कल कन्याकुमारी पहुंचे और भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की। श्री मोदी ने 33 वर्ष पहले 11 दिसंबर 1991 को इसी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मणिपुर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ से इम्फाल शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 व्यक्ति लापता है। बाढ़ से 1,88,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय बल और सेना राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं तथा बाढ़ से प्रभावित परिवार राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं।
राज्य के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मणिपुर में अचानक आई बाढ़ से 1,88,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इम्फाल शहर के निचले इलाके और प्रमुख सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 56 राहत शिविर खोले हैं और उन्हें जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है। इम्फाल घाटी में बहने वाली प्रमुख नदियों के तटों की मरम्मत, दरारों और अतिप्रवाह से निपटने का काम जारी है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल रात मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। श्री बीरेन ने इम्फाल शहर में चल रहे बचाव अभियान का भी निरीक्षण किया। जेजे थोकचोम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
उत्तर और पूर्वी भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। बिहार में भीषण गर्मी से 29 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग बीमार हुए। ये मौतें पिछले 24 घंटों के दौरान हुई। सबसे ज्यादा 12 मौतें औरंगाबाद जिले में हुई, जहां पारा 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भोजपुर जिले में 6 जबकि रोहतास और जहानाबाद में 4-4 लोगों की मौत हुई। बक्सर, अरवल और नालंदा जिलों से 1-1 व्यक्ति की मौत होने की खबर है। औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, पटना, नवादा और आसपास के इलाकों सहित राज्य के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य सरकार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों को 8 जून तक बंद कर दिया है। ओडिशा में सुंदरगढ़ में भीषण गर्मी से 14 लोगों की मौत हुई है। आकाशवाणी से बात करते हुए मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉ आर के जनामणि ने कहा कि तापमान में धीरे धीरे दर्ज हुई थोड़ी गिरावट के बाद भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में गर्मी की स्थिति वैसी ही बनी हुई है।
टूची बियर हीट वेव जो पश्चिम राजस्थान और पूर्व राजस्थान के कंटिन्यू है और उसी के साथ साथ पंजाब हरियाणा कंप्लीट उत्तर प्रदेश राजधानी दिल्ली है यहाँ भी तापमान जो है 45-47 अभी भी चल रहा है। आज जो है ये सारा इलाका के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ये कल भी रहेगा, कल के बाद कल आफ्टरनून इवनिंग में मेनली पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश ये इलाका में थंडरस्टॉर्म डस्टम हो सकता है जिसके कारण से 2 जून ऑनवर्ड बड़ा राहत मिलेगा।
दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक विशेष रेड जोन बनाया गया है। अस्पताल की आपातकालीन चिकित्सा विभाग की प्रमुख डॉक्टर सीमा बालकृष्ण वासनिक ने बताया कि भीषण गर्मी का तुरंत इलाज जरूरी है क्योंकि इससे मृत्यु का खतरा कम हो जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की जल की आवश्यकता पूरी करने में सहयोग करने का आग्रह किया है। इस बीच भाजपा ने आज राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली के सचिवालय के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के जो बाइडन प्रशासन ने यूक्रेन को अमरीका द्वारा दिए गए हथियार से रूस के अंदर के क्षेत्रों में हमला करने की अनुमति दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमरीका ने यूक्रेन के पूर्वी खारकीव क्षेत्र से सटे रूस के इलाकों पर ही जवाबी कार्रवाई की अनुमति दी है। ये फैसला खारकीव क्षेत्र में रूस की मजबूत स्थिति और युद्ध के मैदान में यूक्रेन के बिगड़ते हालातों को देखकर लिया गया है। हालांकि अमरीका ने रूस के भीतर लंबी दूरी तक हमलों के लिए अपनी नीति में बदलाव नहीं किया है। यूक्रेन अभी भी अमरीकी हथियारों से रूस के भीतरी भागों में आक्रमण नहीं कर सकता है। बाइडेन का ये निर्णय उस युद्ध की तरफ ले जाता है जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार परमाणु हमले की संभावना व्यक्त करते रहे हैं। नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्री यूक्रेन के समर्थन और जुलाई महीने में वाशिंगटन में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए प्रागवे में 2 दिन की अनौपचारिक बैठक करेंगे। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2024 में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला जोड़ी ने किम सो योंग और कॉन्ग ही योंग की दक्षिण कोरियाई जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में 18-21, 21-19 और 24-22 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये स्पर्धा 1 घंटा 19 मिनट तक चली। दिल्ली की एक अदालत ने बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल के मालिक और एक सह आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुछ दिनों पहले इस अस्पताल में लगी भयानक आग में 7 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। अस्पताल के मालिक नवीन खींची और ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी को निजी अस्पताल में लगी आग को देखते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस कर्मचारी को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस बीच नवीन खींची ने एक जमानत याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई 3 जून को होगी। अस्पताल की आग की दुर्घटना की पुलिस जांच में पता चला है कि दिल्ली सरकारी स्वास्थ्य सेवा DGHS द्वारा अस्पताल को जारी लाइसेंस की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। इस जांच में यह भी पता चला है कि अस्पताल के डॉक्टरों की डिग्री नवजात शिशुओं के उपचार करने योग्य नहीं थी। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आज क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कठुआ में तैनात मोटर वाहन निरीक्षक सहित 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और उन्हें तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर के जम्मू परिवहन आयुक्त कार्यालय को संबद्ध कर दिया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में कल हुई बस दुर्घटना में मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 22 तीर्थयात्रियों की मृत्यु होने और 69 लोगों के घायल हो जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। यात्रियों से भरी ये बस तीर्थयात्रियों को लेकर रियासी जिले के शिवखोरी जा रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए कल मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी प्रमुख उम्मीदवार। उत्तर और पूर्वी भारत भीषण गर्मी की चपेट में। ओडिशा और बिहार में अनेक लोगों की मौत। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी। 3 लोगों की मृत्यु और 1,88,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। अमरीका ने यूक्रेन को रूस में कुछ निश्चित ठिकानों पर अमरीकी हथियारों से हमले की अनुमति दी। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन में भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।